मीमांसा दर्शन का दूसरा टॉपिक प्रमाण विचार का यह पहला टॉपिक है ज्ञान के रूप और साधन। अन्य मतों की तरह मीमांसा भी दो प्रकार के ज्ञान मानती है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। यथार्थ ज्ञान वह है जिससे किसी विषय में नई बात मालूम होती है, जो दूसरे प्रमाण से बाधित नहीं होता और जिसके मूल में कोई दोष नहीं रहता। जैसे पांडुरोगी को सब कुछ पीला दिखता है, केवल सत पदार्थ ही प्रत्यक्ष का विषय हो सकता है। जब ऐसे विषय का किसी इंद्रिय के साथ संपर्क होता है, तभी उस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मा को होता है। इंद्रिय के साथ संयोग होने पर पहले विषय की प्रतीति मात्र होती है, वह है केवल इतना ही ज्ञान होता है, वह क्या है इसका ज्ञान नहीं। ऐसे निर्विशेष ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान या आलोचना ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान की दूसरी अवस्था वह है जिसमें हम पूर्वानुभव के आधार पर उस विषय का स्वरूप निर्धारित करते हैं, अर्थात वह किस प्रकार की वस्तु है, उसमें गुण या क्रिया है, उसका क्या नाम है आदि बातों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे वह मनुष्य है, वह सुंदर है, वह दौड़ता है, वह राम है इत्यादि। ऐसे सविशेष ज्ञान को सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा नाना नाम रूपात्मक जगत का सत्य ज्ञान होता है, यद्यपि निर्विकल्प अवस्था में विषयों का स्पष्ट बोध नहीं होता, तथापि वे बीज अवस्था में विद्यमान रहते हैं और सविकल्प अवस्था में प्रस्फुटित हो जाते हैं। सविकल्प ज्ञान में किसी नए विषय का ज्ञान नहीं होता है। यदि हमें पहले से मनुष्य या सुंदर आदि का अनुभव नहीं रहता, तो वह मनुष्य है, वह सुंदर है, ऐसा हम कैसे कहते। इससे सूचित होता है कि यद्यपि सविकल्प प्रत्यक्ष में उद्देश्य विधेय आदि का संबंध स्थापित किया जाता है, तथापि वह विशद ज्ञान काल्पनिक या मिथ्या नहीं, जैसा कुछ बौद्ध और कुछ वेदांति समझते हैं। कुछ बौद्धों का मत है कि निर्विकल्पक ज्ञान का विषय सर्वथा स्वलक्षण होता है, अर्थात उसमें कोई प्रकारता नहीं होती। कुछ वेदांतियों का मत है कि वह शुद्ध निर्विच्छिन्न सत्ता ही का ज्ञान है, किंतु मीमांसक ऐसा नहीं मानते। उनका मत है कि इंद्रियों के साथ संपर्क होने पर प्रथम ही क्षण में बाह्य विषय और उसके नाना धर्मों का अस्फुट ज्ञान हो जाता है। प्रमाण विचार का दूसरा टॉपिक है अपरोक्ष ज्ञान। मीमांसा दर्शन में प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और भी पांच प्रमाण माने गए हैं। पहला अनुमान, दूसरा उपमान, तीसरा शब्द, चौथा अर्थापत्ति और पांचवा अनुपलब्धि। इनमें अंतिम प्रमाण अनुपलब्धि को केवल भट्ट मीमांसक मानते हैं, प्रभाकर नहीं। मीमांसा का अनुमान विषय विचारक करीब न्याय ही जैसा है, अतएव उसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं। यहाँ से चार प्रमाणों का वर्णन किया गया है। क उपमान, न्याय में उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। मीमांसा में भी इसे स्वतंत्र प्रमाण माना गया है, परंतु मीमांसा इसको दूसरे ही अर्थ में ग्रहण करती है। इसके अनुसार उपमान जन्य ज्ञान तब होता है जब हम पहले देखी हुई वस्तु के सदिश किसी वस्तु को देखकर समझते हैं कि स्मृत वस्तु प्रत्यक्ष वस्तु के सदृश है। एक दृष्टांत से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए किसी ने गाय देखी है, परंतु नील गाय नहीं देखी। वह जंगल में पहले पहल नील गाय को देखता है। वह गाय के सदिश देखने में लगती है, इससे वह जान जाता है कि गाय नील गाय के सदृश है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि गाय का उस समय प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। यह स्मृति जन्य ज्ञान भी नहीं, क्योंकि यद्यपि उस गाय का ज्ञान पूर्व में हुआ था, तथापि उसका वर्तमान विषय अर्थात नील गाय के सादृश्य उस समय ज्ञात नहीं था। अतएव यह सादृश्य ज्ञान स्मृति जन्य नहीं कहा जा सकता। यह अनुमान भी नहीं है। वह नील गाय गाँव में देखी हुई गाय के सदृश है, इससे गांव की गाय एक नील गाय के सदृश है। ऐसा अनुमान करने के लिए हमें ऐसे व्याप्तिमूलक वाक्य चाहिए कि सभी पदार्थ अपने सदृश पदार्थों के सदृश होते हैं, परंतु यहाँ ऐसी व्याप्ति का व्यवहार नहीं है। अतएव यह ज्ञान कि गाय नील गाय के सदृश होती है अनुमान जन्य भी नहीं है। इसी तरह यह ज्ञान शब्द प्रमाण से भी उपलब्ध नहीं है, अतः इसे एक स्वतंत्र प्रकार का ज्ञान ही मानना आवश्यक है। न्याय का मत यह है, पहले आप्तवाक्य के द्वारा यह मालूम रहता है कि गाय के सदृश नील गाय होती है। तब कोई जंगल में जाकर यदि गाय के आकार प्रकार का कोई जंतु देखता है तो उसे ज्ञात हो जाता है कि यह जंतु गवय है। यही उपमान है, परंतु इसके विरुद्ध मीमांसकों का कहना है कि यहाँ यह जंतु विशेष गाय के सदृश है, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, और गाय के सदृश जंतु गवय है, ऐसा ज्ञान शब्द प्रमाण की स्मृति के द्वारा होता है। फलतः यह जंतु गवय है, ऐसा ज्ञान अनुमान के द्वारा प्राप्त हो जाता है। अतएव न्यायिक जिसे प्रमाण मानते हैं वह यथार्थता स्वतंत्र नहीं है। ऊपर मीमांसा का जो मत दिया गया है वह नवीन मीमांसकों का है। सबर स्वामी का मत कुछ भिन्न सा है। उनका उपमान प्राय वही जान पड़ता है जिसे पाश्चात्य तर्कशास्त्र में एनालॉजी या फिर सादृश्यात्मक ज्ञान कहते हैं। वह उपमान का यह दृष्टांत देते हैं, जैसे मुझे यह अनुभव है कि मैं हूँ, उसी तरह मैं जान सकता हूँ कि औरों को भी अपने आत्मा का अनुभव होता है। मुझे ऐसा जो ज्ञान है वह किस आधार पर, यही उपमान है। अतएव वह उपमान का लक्षण करते हैं ज्ञात वस्तु के सादृश्य के आधार पर अज्ञात वस्तु का ज्ञान। यह उदाहरण एनालॉजिकल आर्गुमेंट से भिन्न नहीं जान पड़ता। इस संबंध में यह जानना चाहिए कि सादृश्य को मीमांसा में एक स्वतंत्र पदार्थ माना जाता है। इसे गुण के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि गुण में गुण नहीं होता, परंतु दो गुणों में सादृश्य रह सकता है। इसे सामान्य जाति की कोटि में भी नहीं रख सकते, क्योंकि सामान्य जैसे गोत्र सभी व्यक्तियों में जैसे गायों में एक ही रहता है। सादृश्य में यह बात नहीं, सादृश्य का अर्थ पूर्ण एक या तादात्म्य नहीं, किंतु अधिकांश विषयों में समानता है। ख शब्द मीमांसा दर्शन को वेद का प्रामाण्य स्थापित करना है, अतः इसमें शब्द प्रमाण को पूरा महत्व दिया गया है। सार्थक वाक्य यदि वह अनाप्त या अविश्वस्त व्यक्ति के मुंह से नहीं निकला हो, ज्ञान प्राप्त कराने वाला होता है, इसे शब्द प्रमाण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पौरुषेय और अपौरुषेय। आप्त विश्वस्त व्यक्ति का कथित या लिखित वचन पौरुषेय कहलाता है। वेदावाक्य अपौरुषेय माना जाता है। वेद वाक्य दो प्रकार का होता है, अर्थात जिस वाक्य में किसी सिद्ध विषय के बारे में ज्ञान होता है और जिस वाक्य से किसी क्रिया के लिए विधि या आज्ञा सूचित होती है। वेद के वाक्य विशेषतः कर्तव्य क्रिया के विधायक वाक्य जो यज्ञादि के संपादनार्थ कर्तव्य का निर्देश करते हैं, मीमांसा की दृष्टि में अपौरुषेय और स्वतः प्रमाण है। वेदों का विशेष महत्व उनके विधि वाक्यों को लेकर है, बल्कि मीमांसा का यहाँ तक कहना है कि वेद वाक्य की उपयोगिता क्रिया को ही लेकर है। यदि सिद्धार्थक वाक्य विधि वाक्य का सहायक नहीं हो तो अनर्थक है। अतएव आत्मा ब्रह्म आदि के विषय में जितने सिद्धार्थक वाक्य हैं, उनका किसी न किसी योगादि कर्मों के विधायक वाक्य से अवश्य ही संबंध है। वे परोक्ष रूप से लोगों को विहित कर्म में प्रवृत्त और निषिद्ध कर्म से निवृत्त होने में सहायक होते हैं। मीमांसा ऐसे वाक्यों का तात्पर्य निर्धारित कर उनका मूल्य आंकती है। अधिकांश आस्तिक मतों के अनुसार वेदों की प्रामाणिकता इसीलिए है कि वह ईश्वर कृतिक है, परंतु मीमांसा का सृष्टिकर्ता या संहारकर्ता में विश्वास नहीं है। वह वेद तथा जगत को नित्य मानती है। मीमांसा के अनुसार वे मनुष्य कर्तुक या ईश्वर कृतिक नहीं है, अतः वो पौरुषेय कहे जाते हैं। इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए अनेक युक्तियां दी जाती हैं। एक तो यहाँ वेद के कर्ता का कहीं नाम नहीं है, दूसरे जिन ऋषियों के नाम वैदिक मंत्रों में आए हैं वे केवल दृष्टा व्याख्याता अथवा भिन्न भिन्न वैदिक संप्रदायों के प्रवर्तक हैं, उन मंत्रों का कर्ता नहीं। सबसे प्रधान युक्ति जो दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह शब्द नियतत्ववाद पर अवलंबित है। वह सिद्धांत यह है कि क और ख आदि वर्ण ही मूल शब्द हैं, वर्ण नित्य है। क ख आदि जो ध्वनियां हम प्रत्यक्ष सुनते हैं वे वर्णों के प्रकाशक मात्र हैं। यदि प्रत्यक्ष शब्द को ही वास्तविक शब्द मान लिया जाए तो 10 बार ग के उच्चारण को 10 शब्द मानना पड़ेगा। तब हम ये नहीं कह सकते कि एक ही शब्द जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा ध्वनित होने पर भी एक ही माना जाता है गौ उच्चारण से उत्पन्न नहीं वरन व्यक्त होता है। यदि एक ही शब्द या वर्ण समूह के पृथक पृथक उच्चारण को हम एक ही वस्तु की अनेक अभिव्यक्तियां नहीं समझेंगे तो उनसे एक ही अर्थ निकलना कैसे संभव होगा। अतएव वास्तविक शब्द हमारे कंठ से स्फुटित होता है उत्पन्न नहीं। वास्तविक शब्द अनादि होने के कारण नित्य है। अतएव शब्द और अर्थ का संबंध नित्य और स्वाभाविक है आधुनिक या सांकेतिक नहीं। वेद ऐसे ही नित्य और मूलभूत शब्दों के भंडार हैं। लिखित या उच्चरित वेद नित्य वेद के प्रकाश मात्र हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि वेद अपौरुषेय है। वेदों की अपौरुषेयता के पक्ष में एक युक्ति यह भी दी जाती है कि वे कर्मों के अनुष्ठान से फल यथा स्वर्ग की प्राप्ति होना बतलाते हैं। कर्मों और फलों का यह संबंध ऐसा नहीं है कि किसी के द्वारा प्रत्यक्ष देखा जा सके, जैसे औषध सेवन से रोग निवृत्ति देखी जाती है। अतः कोई मनुष्य वेदों का कर्ता नहीं हो सकता। चार्वाक का कहना है कि धूर्तों ने वेदों की रचना की है, परंतु ऐसा समझना भी ठीक नहीं। यदि वेदों में पाखंड भरा होता तो इतने यत्न से लोग उनका अध्ययन नहीं करते और न उसकी परंपरा कायम रहती है। अल्पज्ञ मनुष्यों के रचित ग्रंथों में जो दोष पाए जाते हैं उनसे वेद सर्वथा मुक्त है। अतः वैदिक ज्ञान अभ्रांत समझा जाता है। अपौरुषेय वेद के अतिरिक्त आप्त व्यक्ति का वचन भी प्रमाण कोटि के अंतर्गत आता है, परंतु वेद वाक्य की यह विशेषता है कि इसी के द्वारा हमें धर्म ज्ञान प्राप्त होता है जो प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाण द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। आप्त वचन जन्य ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा भी उपलब्ध हो सकता है और मूलतः उन्हीं प्रमाणों पर निर्भर रहता है, परंतु वेद जन्य ज्ञान न तो अन्य प्रमाणों से उपलब्ध हो सकता है न किसी पूर्व अनुभव के आधार पर निर्भर है, क्योंकि वेद नित्य है। यही मुख्यतः शब्द प्रमाण है। कुछ लोग शब्द प्रमाण जन्य ज्ञान को अनुमान के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि शब्द की आप्तता से ही उस ज्ञान की यथार्थता का अनुमान होता है। इसके उत्तर में मीमांसा का कहना है कि सभी ज्ञान का स्वतः प्रामाण्य होता है, अर्थात जिस कारण सामग्री से ज्ञान उत्पन्न होता है उसी में ज्ञान की यथार्थता का कारण भी विद्यमान रहता है। अतः अन्य प्रमाणों की तरह शब्द प्रमाण भी ज्ञान का साधन होने के साथ साथ उसकी यथार्थता का भी प्रमाण है। आगे इसका सविस्तार विचार किया जाएगा। अर्थापत्ति कुछ गौ अर्थापत्ति कुछ अनुपत्ति के समाधान के लिए और दृष्टार्थ की कल्पना जिसकी सहायता के बिना उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती अर्थापत्ति कहलाती है। जब कोई ऐसी घटना देखने में आती है जो बिना एक दूसरे विषय की कल्पना किए समझ में नहीं आ सकती तो उस अदृश्य विषय की कल्पना को अर्थापत्ति कहते हैं। दूसरे शब्द में अर्थापत्ति वह आवश्यक कल्पना है जिसके द्वारा कोई अन्यथा अनुपन्न विषय उत्पन्न हो जाए। जैसे मान लीजिए देवदत्त दिन में कभी भोजन नहीं करता, फिर भी दिनों दिन मोटा होता जाता है। अब यहाँ इन दोनों बातों में उपवास और शरीर पुष्ट में परस्पर विरोध देखने में आता है। अब इन दोनों विरुद्ध बातों की उत्पत्ति तभी संभव हो सकती है जब यह कल्पना कर ली जाए कि देवदत्त रात में खूब भोजन करता है। इस तरह की कल्पना के द्वारा विरुद्ध कोटिक विषयों का समन्वय हो जाता है और उनकी संगति बैठ जाने से घटना समझ में आ जाती है। ऐसी कल्पना को अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थापत्ति के द्वारा उपलब्ध ज्ञान विशिष्ट प्रकार का होता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुमान या शब्द के अंतर्गत नहीं आता। यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देवदत्त को हमने रात में भोजन करते हुए नहीं देखा है। यह शब्द प्रमाण भी नहीं, क्योंकि किसी आप्त वाक्य के द्वारा हमें यह बात कि देवदत्त रात में खाता है मालूम नहीं हुई है। इसे अनुमान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शरीर के मोटा होने में और रात्रि में भोजन करने में व्याप्ति संबंध, अर्थात जहाँ जहाँ शरीर का मोटापा रहता है वहाँ वहाँ रात से भोजन करना भी पाया जाता है, नहीं है जिसके बल पर हम जान सकें कि देवदत्त रात में भोजन करता है। दैनिक जीवन में अर्थापत्ति का बराबर प्रयोग होता है। कुछ दृष्टांत लीजिए। मान लीजिए हम किसी मित्र के घर जाते हैं जो जीवित है, वे नहीं मिलते, तब हम सोचते हैं कि वे कहीं अन्यत्र गए होंगे। ऐसा हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि बिना ऐसी कल्पना के किसी जीवित मनुष्य का घर पर नहीं पाया जाना समझ में नहीं आ सकता। इसी तरह वाक्य का अर्थ लगाते समय भी कभी कभी अर्थपत्ति का सहारा लिया जाता है। यदि किसी वाक्य में कुछ शब्द जोड़े बिना अर्थ की संगति नहीं बैठती है तो हम उन शब्दों का अध्याहार कर लेते हैं, जैसे लाल पगड़ी को बुलाओ। इस वाक्य में लाल पगड़ी से लाल पगड़ी वाले मनुष्य का अर्थ ग्रहण किया जाता है, अर्थात मनुष्य का अध्याहार कर लिया जाता है। इसी तरह वह गांव गंगा जी पर है, यह गंगा जी पर का अर्थ लिया जाता है गंगा जी के तट पर। यहाँ मुख्यार्थ की अनुत्पत्ति के कारण अर्थापत्ति द्वारा एक गौण अर्थ को लेते हैं। मीमांसा गण दो प्रकार की अर्थापत्ति मानते हैं। पहला दृष्टार्थापत्ति, अर्थात जहाँ अर्थापत्ति के द्वारा किसी दृष्टार्थ या देखी हुई घटना की उत्पत्ति हो सके, जैसे देवदत्त का दृष्ट मोटापन तभी समझ में आ सकता है जब यह कल्पना की जाए कि वह रात में खाता है। और दूसरा श्रुतार्थापत्ति, जहाँ अर्थापत्ति के द्वारा किसी श्रुतार्थ या सुनी हुई बात की संगति हो सके, जैसे वह गांव गंगा जी पर है, यह बात तभी समझ में आ सकती है जब इस अर्थ की कल्पना की जाए कि वह गांव गंगा जी के किनारे पर बसा है। इसी तरह वैदिक विधि है, विश्वजीत यज्ञ करे, यहाँ पूर्ण समझने के लिए यह अध्याहार करना होगा कि जिसे स्वर्ग प्राप्ति की कामना हो। अर्थापत्ति की समानता उस वस्तु से है जिसे पाश्चात्य तर्कशास्त्र में हाइपोथेसिस कहते हैं। यह एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस सा मालूम होता है, परंतु भेद यह है कि जहाँ हाइपोथेसिस में अनिश्चितता होती है वहीं अर्थापत्ति में निश्चितता का भाव रहता है। अर्थापत्ति में यह विश्वास रहता है कि यहाँ यही एकमात्र उत्पत्ति संभव है, दूसरी नहीं। अर्थापत्ति को अनुमान भी नहीं कह सकते, क्योंकि अनुमान का काम है दिए हुए वाक्यों से निष्कर्ष निकालना, न कि दी हुई घटना के कारण किसी की उत्पत्ति करना। अनुमान हेतु से निगम की ओर जाता है, अर्थापत्ति फल देखकर हेतु की कल्पना करती है। घ अनुपलब्धि, भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत का यह मत है कि किसी विषय के अभाव का जो साक्षात ज्ञान होता है वह अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा होता है। इस कोठरी में घड़ा नहीं है, यहाँ घट का अभाव मुझे कैसे विदित होता है? इस ज्ञान को प्रत्यक्ष तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभाव कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका इंद्रिय के घट का चक्षुन्द्रिय के साथ संयोग हो सकता है, घटाभाव का नहीं। अतएव भाट मीमांसक और अद्वैत वेदांती का यह कहना है कि यहाँ घटाभाव का ज्ञान घट की अनुपलब्धि या आदर्शन के कारण होता है। न देखने से ही मैं जान सकता हूँ कि कोठरी में घड़ा नहीं है। जिस तरह उपयुक्त ज्ञान प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं आता, उसी तरह अनुमान की कोटि में भी नहीं आ सकता है। यदि ऐसा कहा जाए कि घट का अभाव घट के आदर्शन से अनुमान किया जाता है तो वह संगत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा अनुमान तभी संभव होता है जब हमें अदर्शन या अनुपलब्धि और अभाव में व्याप्ति संबंध का ज्ञान रहता है, अर्थात जब हमें ऐसा ज्ञान रहता है कि जिस वस्तु का दर्शन नहीं होता उसका अभाव रहता है। परंतु यदि ऐसा मान ले तो आत्माशय दोष उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि जो सिद्ध करना है उसे हम पहले ही मान लेते हैं। इसी तरह यह ज्ञान शब्द या उपमान के अंतर्गत भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ आप्त वाक्य या सादृश्य ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार घटाभाव अर्थात यहाँ घड़ा नहीं है, इसका जो साक्षात ज्ञान हमें होता है उसकी उत्पत्ति करने के लिए हमें स्वतंत्र प्रमाण मानना होगा, इसी को अनुपलब्धि कहते हैं। इस संबंध में यह बात दृष्टव्य है कि अनुपलब्धि मात्र से अभाव सूचित नहीं होता। रात्रि के घने अंधकार में घड़ा रहते हुए भी नहीं सूझता परमाणु, आकाश, पाप, पुण्य आदि अदृश्य पदार्थ भी प्रत्यक्ष नहीं होते, तथापि हम उनका अभाव नहीं मानते। जिस वस्तु की जिस परिस्थिति में उपलब्धि होनी चाहिए, उस परिस्थिति में उसकी उपलब्धि नहीं होने से ही उसका अभाव जाना जाता है। इस तरह अभाव ज्ञान का कारण योगानुपलब्धि अर्थात प्रत्यक्ष योग वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। मीमांसा दर्शन का तीसरा टॉपिक है प्रामाण्य विचार। जब किसी ज्ञान की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त कारण सामग्री होती है और इसीलिए संशय या भ्रम की गुंजाइश नहीं रहती, तब जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह निश्चयात्मक या विश्वासजनक होता है। जैसे दिन दोपहर के उजाले में ठीक आंख के सामने कोई चीज साफ साफ देखने में आती है तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। विश्वस्त सूत्र से सार्थक और स्पष्ट वाक्य के द्वारा शब्द ज्ञान होता है। जहाँ पर्याप्त हेतु रहता है वहाँ अनुमान लगाया जाता है। दैनिक जीवन में इस तरह का कोई ज्ञान प्राप्त होते ही हम तदनुकूल काम करने लग जाते हैं। वह ज्ञान यथार्थ है या नहीं इस बात की तर्क द्वारा समीक्षा नहीं करते, फिर भी उस ज्ञान के आधार पर चलकर हम क्रिया में सफलतापूर्वक प्रवृत्त होते हैं। ज्ञान और क्रिया में विरोध या विसंवाद नहीं होता, इसे सूचित होता है कि वह ज्ञान यथार्थ है। इसके विपरीत जब हम उस ज्ञान की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त कारण सामग्री में कोई त्रुटि या दोष रहता है तब वह ज्ञान उत्पन्न होता ही नहीं। जैसे पांडु रोगी को जिसकी दृष्टि में दोष रहता है और सब चीजें पीली नजर आती हैं यथार्थ प्रत्यक्ष नहीं होता। इसीलिए जब तक शंका या अविश्वास के सभी स्थल दूर नहीं हो जाते तब तक विश्वास उत्पन्न नहीं होता। उपर्युक्त बातों में मीमांसक दो निष्कर्ष निकालते हैं। पहला, ज्ञान का प्रामाण्य अथवा प्रामाणिकता उस ज्ञान की उत्पादक सामग्री में ही विद्यमान रहता है, कहीं बाहर से नहीं आता। दूसरा, ज्ञान उत्पन्न होते ही उसके प्रामाण्य का भी ज्ञान हो जाता है। यह नहीं कि प्रमाणांतर से परीक्षा करने के लिए हम ठहरे रहें और जब वह ज्ञान दूसरी जांच की कसौटी पर ठीक उतर जाए तब हम उसे सत्य समझें। इस सिद्धांत को जिसमें उपर्युक्त दोनों बातें सम्मिलित हैं स्वतः प्रामाण्यवाद कहते हैं। इस मत के अनुसार सत्य स्वतः प्रकाश होता है। जब कोई ज्ञान उत्पन्न होता है तो उसी में उसकी सभ्यता का गुण भी सन्निहित होता है। कभी कभी दूसरे ज्ञान के द्वारा हमें मालूम होता है कि वह भ्रमपूर्ण है, अर्थात उस ज्ञान के आधार में कोई त्रुटि या दोष है। इस अवस्था में आधार के दोष से हम उस ज्ञान की सदोषता या मिथ्या तत्व का अनुमान करते हैं। इस प्रकार किसी ज्ञान के मिथ्या तत्व का निश्चय अनुमान के द्वारा होता है, परंतु ज्ञान की सत्यता स्वतः प्रमाण होती है। संक्षेप में यूं कहिए कि विश्वास उत्पन्न करना ज्ञान का स्वाभाविक नियम है। अविश्वास कुछ बाधक कारण मालूम होने से ही होता है। प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसकी सत्यता में हम स्वभावतः बिना किसी तर्क वितर्क के विश्वास कर लेते हैं। हाँ, यदि उसके प्रतिकूल कोई प्रमाण मिलता है जिससे वह बाधित या खंडित हो जाए तभी हम उस ज्ञान के विषय में शंका करने या उसकी सत्यता का अनुमान करने को बाध्य हो जाते हैं, उसकी असत्यता का अनुमान करने को बाध्य होते हैं। यूं बिना विशेष कारण से हमें ज्ञान की सत्यता में संदेह नहीं होता। इसी विश्वास पर हमारे जीवन का काम चलता है। न्यायिकों का मत है कि प्रत्येक ज्ञान का प्रमाण उस ज्ञान की उत्पादक कारण सामग्री के अतिरिक्त कुछ कारणों से उत्पन्न होता है। जैसे कोई प्रत्यक्ष ज्ञान प्रामाणिक है या नहीं इस बात पर निर्भर करता है कि वह ज्ञानेंद्रिय जैसे आँख जिनके आधार पर हम सामने एक नदी देख रहे हैं ठीक है या नहीं। परंतु मीमांसा का कहना है कि ये अतिरिक्त कारण जैसे नेत्र की निर्विकारिता भी वस्तुतः प्रत्यक्ष ज्ञान के ही सहायक कारण हैं, अर्थात कारण सामग्री के अंग हैं जिनके बिना विश्वास या ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। न्यायिकों का मत है कि प्रत्येक ज्ञान का प्रामाण्य अनुमान के द्वारा निश्चित होता है। इसके विरुद्ध मीमांसा का कहना है कि ऐसा मानने से अनवस्था दोष या इनफाइनाइट रिग्रेस आ जाएगा, अर्थात क के प्रामाण्य के लिए ख का आश्रय लेना पड़ेगा, ख के प्रामाण्य के लिए ग का, इस तरह कभी अंत ही नहीं होगा। जिस प्रकार किसी का प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा और जीवन में प्रामाण्य निश्चय करने के बाद कोई काम करना असंभव हो जाएगा। मान लीजिए हम एक बाघ देखते हैं, यदि उसको देखने पर पहले हम उस ज्ञान का प्रामाण्य अनुमान के द्वारा सिद्ध करना चाहें तो फिर उसी नियम के अनुसार उस अनुमान का भी प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए दूसरे अनुमान का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा और इस तरह इस क्रिया की समाप्ति नहीं होगी, इस तरह जीवन असंभव हो जाएगा। बाघ को देखने के साथ ही हम वहां से भागते हैं यदि उसका प्रामाण्य निश्चित करने के लिए दूसरे के बाद तीसरा इस तरह अनुमानों का अवलंबन करने लग जाते हैं तो हम बाघ को देखते ही नहीं भागते। यह सत्य है कि जहाँ किसी ज्ञान के विषय में शंका का स्थल रहता है वहाँ हम उसकी सत्यता का निश्चय करने के लिए अनुमान का सहारा लेते हैं, परंतु इसका उद्देश्य होता है ज्ञान के मार्ग में जो प्रतिबंधक है उसे दूर करना। बाधा दूर हो जाने पर वह ज्ञान, यदि वह सत्य ज्ञान है, तो प्रकट हो जाता है और उसकी सत्यता या असत्यता का ज्ञान भी उसके साथ प्रकट हो जाता है। यदि उस शंका या बाधा का निवारण अनुमान के द्वारा नहीं हो सकता तो फिर वह ज्ञान उत्पन्न होता ही नहीं। लौकिक या वैदिक, पौरुषेय या अपौरुषेय शब्द के द्वारा भी इसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि शंका या अविश्वास के लिए कोई आधार न हो तो कोई सार्थक वाक्य सुनने पर हमें स्वभावतः विश्वास हो जाता है। अतएव नित्य अपौरुषेय वेद भी स्वतः प्रमाण है, उनका प्रामाण्य स्वयं सिद्ध है, किसी अनुमान पर निर्भर नहीं। हाँ, मन से संशयों को दूर करने के लिए तर्क का प्रयोजन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने पर वेदों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इस प्रतीति या विश्वास के लिए मीमांसा इतना ही करती है कि वेदों की अभ्रांतता के विरुद्ध जितने भी आक्षेप हो सकते हैं उनका निराकरण करता है, जिससे वैदिक ज्ञान की यथार्थता स्वीकार करने में किसी को संदेह नहीं रहे। घ भ्रम क्या है? यदि प्रत्येक भ्रम क्या है? यदि प्रत्येक ज्ञान स्वतः प्रमाण है और उसकी सत्यता भी स्वयं प्रकाश है तो फिर भ्रम की उत्पत्ति कैसे होती है? ये सभी टॉपिक प्रमाण विचार के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान के रूप और साधन, अपरोक्ष ज्ञान के अंतर्गत चारों उपमान शब्द अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, तीसरा प्रामाण्य विचार और चौथा भ्रम क्या है। चौथा टॉपिक है भ्रम क्या है। यदि प्रत्येक ज्ञान स्वतः प्रमाण है और उसकी सत्यता भी स्वयं प्रकाश है तो फिर भ्रम की उत्पत्ति कैसे होती है? भारतीय दर्शनों में भ्रम के संबंध में गहरी छानबीन की गई है। प्रभाकर मीमांसकों का मत है कि प्रत्येक ज्ञान सत्य होता है और कोई ज्ञान असत्य नहीं, जिसे हम भ्रम कहते हैं। जैसे रस्सी को सांप का आकार देना या रस्सी में सर्प का आभास होना, उसमें भी दो तरह के ज्ञानों का सम्मिश्रण पाया जाता है। एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी सी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान और पूर्व काल में प्रत्यक्ष हुए सर्प की स्मृति, ये दोनों ही सत्य हैं। केवल स्मृति दोष से हम इतना भूल जाते हैं कि वह सर्प स्मृति का विषय है, प्रत्यक्ष का नहीं, अर्थात प्रत्यक्ष और स्मृति के भेद का अनुभव नहीं होता। इसलिए हम रज्जु के प्रति वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा सर्व के प्रति करना चाहिए। यहाँ दोष हमारे व्यवहार में है, स्मृति प्रदोष स्मरण के लोप के कारण विवेकाग्रह अर्थात भेद के ज्ञान का अभाव हो जाता है। यह दोष केवल अभावात्मक या निगेटिव अर्थात ज्ञान का अभाव मात्र है। इसे भ्रम नहीं कहा जा सकता क्योंकि भ्रम अज्ञान मात्र नहीं है, परंतु मिथ्या का सत्य रूप से भान होना ही भ्रम का अर्थ है। और ऐसा कभी कभी नहीं होता। प्रभाकर मीमांसकों का यह अख्यातिवाद कहलाता है। इसमें भ्रम की सत्ता को ही स्वीकार किया जाता है। भारतीय मीमांसक इस मत को नहीं मानते। उनका कहना है कि कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि मिथ्या विषय जैसे रज्जु में कल्पित सर्प भी प्रत्यक्ष सा भासित होने लगता है। आंख की पुतलियों को दबाकर देखने से दो चंद्रमा दिखलाई पड़ते हैं। भारतीय मीमांसक कहते हैं कि जब हम रस्सी में सर्प देखते हैं और कहते हैं कि यह सर्प है तो यहाँ उद्देश्य और विधेय दोनों ही सत्य हैं। जो रस्सी वर्तमान है वह सांप की कोटि में ले आई जाती है। संसार में सत्ता दोनों की ही है। भ्रम इस बात को लेकर होता है कि हम दो सत्य किंतु पृथक पदार्थ में उद्देश्य विधेय का संबंध जोड़ देते हैं। भ्रम इसी संसर्ग को लेकर होता है, न कि विषयों को लेकर जो वास्तविक पदार्थ हैं। चंद्रमा वाले भ्रम में भी आकाश के दो वास्तविक भागों का संबंध चंद्रमा के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे एक ही चंद्रमा दो स्थानों में आभासित होता है। ऐसे विपर्यय के कारण लोग विपरीत आचरण करते हैं। भारत मीमांसकों का यह मत विपरीत ख्यातिवाद कहलाता है क्योंकि इसके कारण अकार्य में कार्यता का भान होता है। इस प्रकार देखने में आता है कि प्रभाकर मीमांसा किसी ज्ञान में भ्रम की सत्ता स्वीकार ही नहीं करती। भारत मीमांसक भ्रम की सत्ता स्वीकार करते हैं, परंतु उनका कहना है कि भ्रम विषयों को लेकर नहीं, उनके संसर्ग को लेकर होता है। परंतु दोनों ही संप्रदाय इस विषय में सहमत हैं कि भ्रम का प्रभाव ज्ञान की अपेक्षा हमारे व्यवहार पर अधिक पड़ता है। इसके अतिरिक्त दोनों ही भ्रम को अपवाद रूप समझते हैं। सामान्यतः यही नियम है कि प्रत्येक ज्ञान सत्य का दर्शन कराता है। इसी विश्वास पर हमारा दैनिक जीवन का व्यवहार चल सकता है। हाँ, कभी कभी इस नियम का अपवाद भी पाया जाता है। जैसे हम भ्रम का नाम देते हैं, परंतु कुछ अपवादों के रहते हुए भी स्वाभाविक नियम ही मान्य समझा जाता है। मीमांसा दर्शन का तीसरा टॉपिक है तत्व विचार। तत्व विचार का पहला टॉपिक सामान्य रूपरेखा, प्रत्यक्ष ज्ञान की यथार्थता के आधार पर मीमांसा जगत और उसके समस्त विषयों को सत्य मानती है। अतएव यह बौद्ध मत के शून्यवाद और क्षणिकवाद को तथा अद्वैत मत के मायावाद को नहीं मानती। प्रत्यक्ष विषयों के अतिरिक्त यह स्वर्ग, नर्क, आत्मा, वैदिक यज्ञ के देवताओं का अस्तित्व भी अन्य प्रमाणों के आधार पर मानती है। आत्मा और परमाणु नित्य अविनाशी पदार्थ हैं। कर्म के नियम के अनुसार सृष्टि की रचना होती है। संसार इन तत्वों से बना है। पहला शरीर या भोगायतन, जिसमें जीवन या जीवात्मा अपने अपने पूर्व कर्मों का भोग करते हैं। दूसरा ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, जो सुख दुख भोग के साधन हैं। तीसरा बाह्य वस्तुएं, जो भोग के विषय हैं। मीमांसा को ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं पड़ता। कुछ मीमांसक वैशेषिकों की तरह परमाणुवाद को मानते हैं, परंतु भेद यह है कि मीमांसकों के नियम के अनुसार ही वे सदा इस तरह प्रवर्तित होते हैं, जिससे जीवात्माओं का कर्मफल भोग कराने योग्य संसार बन जाता है। मीमांसा सृष्टि और प्रलय भी नहीं मानती। जगत सर्वदा वर्तमान है। कुछ भाट मीमांसक द्रव्य को नहीं मानते हैं। कुछ भाट मीमांसक द्रव्य, जाति, गुण, क्रिया, अभाव, इन पांचों पदार्थों को मानते हैं, और वैशेषिक के नव द्रव्यों के अतिरिक्त अंधकार अर्थात तम और शब्द को भी द्रव्य ही मानते हैं। इस तरह तत्व विचार की दृष्टि से मीमांसा दर्शन वस्तुवादी अर्थात रियलिस्टिक और अनेक वस्तुवादी यानी प्लूरिस्टिक मीमांसा वेद वाक्य को प्रत्यक्ष से भी बढ़कर मानते हैं। वे स्वर्ग, नर्क, अदृष्ट आदि अनेक तत्वों को मानते हैं, जो अतीन्द्रिय विषय होने के कारण अनुभव गम्य नहीं है। तत्व विचार का दूसरा टॉपिक है शक्ति और अपूर्व। कार्य कारण संबंध के विषय में मीमांसा शक्तिवाद का सिद्धांत मानती है। बीज में एक अदृश्य शक्ति होती है, जिससे वह अंकुर उत्पन्न कर सकता है। जब यह शक्ति बाधित या नष्ट हो जाती है, जैसे बीज को भूंज देने पर, तब यह कार्य अर्थात अंकुर को उत्पन्न नहीं कर सकती। इसी प्रकार अग्नि में जलाने की शक्ति है, शब्द में अर्थबोधकता और क्रियात्मकता की शक्ति है, प्रकाश में भाषित करने की शक्ति है। कारण में अदृश्य शक्ति मानना इसलिए आवश्यक है कि बिना उसके हम इस बात की उत्पत्ति नहीं कर सकते कि कहीं कहीं कारण जैसे बीज या अग्नि वर्तमान रहने पर भी कार्य जैसे अंकुर या दहन क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती। मीमांसक यह कहेंगे कि इन अवस्थाओं में कारण द्रव्य विद्यमान रहते हुए भी उनकी कारण शक्ति किसी हेतु में नष्ट या अभिभूत हो गई है, जिससे कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। न्यायिक इस अदृष्ट शक्ति को नहीं मानते। उनका कहना है कि बिना इसे माने हुए भी उपयुक्त समस्या का समाधान किया जा सकता है। बाधाएं नहीं रहने पर कारण कार्य को उत्पन्न करता है और बाधाएं रहने पर नहीं उत्पन्न करता, अर्थात बाधाओं के अभाव में कार्य उत्पन्न होता है, भाव में नहीं। मीमांसक इस आक्षेप का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तब तो न्यायमत के अनुसार भी कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण के अतिरिक्त और कुछ वस्तु अर्थात बाधा का अभाव भी आवश्यक मानना पड़ेगा। फिर अंतर क्या रहा? यदि और कुछ मानना ही है तो अभाव पदार्थ में क्रियोत्पादक शक्ति मानने के बदले भाव पदार्थ जैसे बीज में ही वह शक्ति क्यों नहीं मानी जाए? इस अदृश्य शक्ति के सिद्धांत के द्वारा मीमांसा एक बड़ी समस्या का समाधान करती है। जैसे जब कर्म का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो आज का किया हुआ कर्म जैसे यज्ञ इसी जीवन के बाद परलोक में कैसे फलित होगा। मीमांसा कहती है कि श्लोक में किया हुआ कर्म एक अदृश्य शक्ति का प्रादुर्भाव करता है जिसे अपूर्व कहते हैं। यह कर्म का फल भोग करने की शक्ति है जो समय पाकर फलित होती है। कर्म फल का व्यापक नियम यह है कि लौकिक या वैदिक सभी कार्यों के फल संचित होते हैं। अपूर्व का सिद्धांत उसी का एक अंश है। तीसरा टॉपिक है तत्व विचार का, तीसरा टॉपिक है आत्मविचार। मीमांसा में आत्मा का विचार बहुत कुछ उसी तरह से किया गया है जैसे अन्यान्य वस्तुवादी और अनेक वस्तुवादी दर्शनों में यथा न्याय वैशेषिकों में। आत्मा नित्य अविनाशी द्रव्य है जो वास्तविक जगत में वास्तविक शरीर के साथ संयुक्त रहता है। मृत्यु के उपरांत भी यह अपने इस जन्म के कर्मों का फल भोग करने के लिए विद्यमान रहता है। चैतन्य आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं किंतु एक औपाधिक गुण है जो अवस्था विशेष में उत्पन्न हो जाता है। सुषुप्तावस्था तथा मोक्षावस्था में आत्मा को चैतन्य नहीं रहता क्योंकि उसके उत्पादक कारणों जैसे इंद्रिय और विषय का संयोग इत्यादि का अभाव हो जाता है। जितने जीव हैं उतनी ही आत्माएं हैं, अर्थात प्रत्येक जीव में पृथक पृथक आत्मा है। जीवात्मा बंधन में आते हैं और उससे मोक्ष भी पा सकते हैं। इन सब बातों में मीमांसा के विचार प्रायः वही हैं जो पूर्वोक्त अन्य आस्तिक दर्शनों के, अतएव पुनरुक्ति करना अनावश्यक है। आत्मा का ज्ञान कैसे होता है इस संबंध में कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। भारत संप्रदाय का मत है कि आत्मा का ज्ञान कभी कभी होता है। प्रत्येक विषय ज्ञान के साथ आत्मज्ञान नहीं होता। जब हम आत्म विचार करते हैं तब अपना बोध होता है कि मैं हूँ। इसे अहवित्ति या सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसी का जो विषय ऑब्जेक्ट है वह आत्मा है। प्रभाकर संप्रदाय इस मत को नहीं मानता। उनका कथन है कि अहवित्ति की धारणा ही अयुक्त है क्योंकि एक ही आत्मा उसी ज्ञान का ज्ञाता अर्थात सब्जेक्ट और ज्ञेय विषय अर्थात ऑब्जेक्ट दोनों नहीं हो सकता। जैसे वही अन्न भोक्ता और भोज्य दोनों एक साथ नहीं हो सकता। कर्ता और कर्म के व्यापारों में परस्पर विरोध होता है। एक क्रिया में एक ही साथ एक वस्तु कर्ता और कर्म दोनों नहीं हो सकती, परंतु प्रत्येक विषय ज्ञान में उसी ज्ञान के द्वारा आत्मा कर्ता के रूप में, विषय के रूप में इत्यादि रूप में उद्भासित होती है। इसलिए जब हमें कोई ज्ञान होता है जैसे यह घड़ा है, तब हम कहते हैं कि मैं घड़े को देख रहा हूँ अथवा मुझे घड़े का ज्ञान हो रहा है। तब हम कहते हैं कि यदि यहाँ मैं स्वयं ज्ञाता के रूप में प्रतीत नहीं होता तो फिर मैंने ही घड़ा देखा यह किस आधार पर कायम किया जाता। इसके उत्तर में भारत संप्रदाय का कथन है कि यदि प्रत्येक विषय ज्ञान के साथ आत्मा का ज्ञान उद्भाषित होता तो मैं इस बड़े को जान रहा हूँ ऐसा बोध सर्वदा वर्तमान रहता, परंतु प्रत्येक विषय ज्ञान के साथ ऐसा नहीं होता। इसे सूचित होता है कि आत्मज्ञान विषय ज्ञान का नित्य सहचर नहीं है। वह कभी उदित होता है कभी नहीं होता, अतः वह विषय ज्ञान से भिन्न है। तब रहा कर्ता और कर्म का विरोध, सो यह कोरा शब्द जाल है। यदि दोनों में वास्तविक विरोध होता तो यह वैदिक विधि वाक्य की आत्मनम विद्धि अर्थात अपनी आत्मा को पहचानो अथवा यह लौकिक प्रत्यय कि मैं अपने को जानता हूँ बिल्कुल निरर्थक हो जाता। इसके अतिरिक्त यदि आत्मा कभी ज्ञान का विषय नहीं होता तो फिर अतीत काल में अपने आत्मा के अस्तित्व को स्मरण करना ही कैसे संभव होता, क्योंकि अतीतकालीन आत्मा तो वर्तमान ज्ञान का ज्ञाता है नहीं। यह केवल वर्तमानकालीन आत्मा के स्मृति ज्ञान का विषय हो सकता है। इसे सिद्ध होता है कि आत्मा ज्ञान का विषय हो सकती है। इसी प्रश्न से लगा हुआ एक दूसरा प्रश्न है, ज्ञान का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। प्रभाकर मीमांसकों का मत है कि प्रत्येक विषय ज्ञान में जैसे मैं यह घड़ा जानता हूँ तीन अंग विद्यमान रहते हैं। पहला ज्ञाता अर्थात जाने वाला, दूसरा अर्थात मैं, दूसरा ज्ञेय जो विषय जाना जाता है जैसे घड़ा, तीसरा ज्ञान अर्थात घड़े को जानना। इन तीनों का ज्ञान एक साथ होता है। इसे त्रिपुटी ज्ञान कहते हैं। जब कभी ज्ञान उत्पन्न होता है तब वह ज्ञाता, ज्ञेय और अपने इन तीनों को प्रकट करता है। अतः ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय का प्रकाशक होने के साथ साथ स्वयं प्रकाश भी होता है। परंतु इसके विपरीत भारतीय मीमांसकों का कहना है कि ज्ञान स्वभावतः अपना विषय स्वयं नहीं हो सकता, जैसे अंगुली का अग्रभाग अपने को नहीं छू सकता। तब हम कैसे जानते हैं कि हमें अमुक विषय का ज्ञान हो रहा है? इसके उत्तर में भारतीय मीमांसक कहते हैं कि हमें कोई भी विषय या तो ज्ञात अथवा प्रकट होता है या तो अज्ञात अप्रकट रहता है। यदि यह ज्ञात प्रकट रहता है तब उस ज्ञाता प्राकृत्य के आधार पर हम यह अनुमान करते हैं कि हमें उस विषय का ज्ञान था। इस तरह ज्ञान का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, वह परोक्ष रूप से ज्ञातता के आधार पर अनुमान के द्वारा प्राप्त होता है। मीमांसा दर्शन का चौथा टॉपिक है धर्म विचार। धर्म विचार का पहला टॉपिक है वेदों का महत्व। मीमांसक जगत कर्ता या ईश्वर को नहीं मानते। वेद की नित्यता और अपौरुषेयता को स्थापित करने की धुन में मीमांसा को ईश्वर की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, बल्कि ईश्वर को प्रधानता देने से वेद का महत्व गौण या कम से कम बराबर हो जाता है। शायद इसलिए मीमांसा में ईश्वरवाद का मंडन नहीं पाया जाता। मीमांसा की दृष्टि में वेद नित्य ज्ञान के भंडार तो हैं ही, उससे अधिक वे शाश्वत नित्य विधि वाक्यों या नियमों के आगार हैं, जिनके अनुसार आचरण यज्ञादि क्रिया करने से हम धर्म प्राप्त कर सकते हैं। उस तरह धर्म का अर्थ ही हो जाता है वेद विहित कर्तव्य। कर्तव्यता और अकर्तव्यता का मानदंड वेद वाक्य ही है। वैदिक व्यवस्था के अनुसार जीवन ही उत्तम है। धर्म विचार का दूसरा टॉपिक है कर्तव्यता। वैदिक युग में जो यज्ञ किए जाते थे वे अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य आदि देवताओं को स्तुति और आहुति के द्वारा संतुष्ट करने के लिए, जिससे वे इष्ट साधन या अनिष्ट निवारण करें। मीमांसा वैदिक धर्म की शाखा है, परंतु उससे कर्मकांड वैदिक प्रक्रियाओं को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि देवताओं का स्थान गौण हो गया है। देवता केवल संप्रदान कारक सूचक पद मात्र हैं, जिनके लिए हवि या आहुति दी जाती है। उनके गुण या धर्म का कोई वर्णन नहीं है। उनकी उपयोगिता केवल इसी बात को लेकर है कि उनके नाम पर होम किया जाता है। एक प्रसिद्ध मीमांसा का कथन है कि यज्ञ करने का प्रधान उद्देश्य पूजा या देवता को संतुष्ट करना नहीं, वरन अपने आत्मा को शुद्ध करना है। वैदिक कर्म इसलिए करना चाहिए कि वेद हमें ऐसा करने के लिए आदेश देते हैं। इनसे कुछ काम कर्म हैं जो स्वर्ग, वृष्टि आदि की कामना से किए जाते हैं, परंतु कुछ कर्म नित्य और नैमित्तिक कर्म ऐसे आवश्यक कर्म हैं जिनका पालन करना इसलिए कर्तव्य है कि वेद की वैसी आज्ञा है। यहाँ कर्मकांड के मार्ग से भी मीमांसा का धर्मशास्त्र अपने चरम उत्कर्ष बिंदु पर पहुँच जाता है, जहाँ निष्काम कर्म ड्यूटी फॉर ड्यूटी से ही धर्म माना जाता है। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कांट की तरह मीमांसक भी कहते हैं कि कर्तव्य का पालन इसलिए नहीं करना चाहिए कि उससे हमारा उपकार होगा, बल्कि इसलिए कि कर्तव्य पालन करना हमारा धर्म है। कांट भी की तरह उनका भी यह विश्वास है कि यद्यपि सकाम भाव से धर्म नहीं करना चाहिए, तथापि यह सृष्टि ऐसी है कि जो धर्म करता है वह उसके फल अथवा सुख से वंचित नहीं रह सकता। अंतर केवल इतना ही है कि जहां इस फल के वितरण के लिए कांट ईश्वर का सहारा लेते हैं, वहीं मीमांसक अपूर्व का अवलंबन करते हैं। कांट के लिए कर्तव्यता का मूल स्रोत है आत्मा का उच्चतर रूप, हायर सेल्फ, जिससे उनका निम्न रूप, लोअर सेल्फ, अनुप्रेरित होता है। मीमांसक के लिए कर्तव्यता का मूल स्रोत एकमात्र अपौरुषेय वेद वाक्य है, जो निष्काम कर्म करने के लिए आदेश देता है। धर्म विचार का तीसरा टॉपिक है निःश्रेयसः। प्राचीन मीमांसकों के मत में स्वर्ग अर्थात नित्य निरतिशय आनंद की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य मानी गई है। इसलिए कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, अर्थात जो स्वर्ग चाहता है वह यज्ञ करे। सभी कर्मों का अंतिम उद्देश्य है स्वर्ग प्राप्ति, परंतु धीरे धीरे मीमांसक गण भी अन्यान्य भारतीय दर्शनों की तरह मोक्ष अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्ति को सबसे बड़ा कल्याण या निःश्रेयस मानने लगे हैं। उनका मत है कि यदि सकाम भाव से किसी विषय की इच्छा से कर्म अर्थात पुण्य या पाप का कर्म किया जाए तो उसके फलस्वरूप बारंबार जन्म लेना पड़ता है। जब मनुष्य समझ जाता है कि समस्त सांसारिक सुख दुख मिश्रित होते हैं और वह इस सांसारिक जीवन से ऊब जाता है, तब अपनी वासनाओं को दमन करने की चेष्टा करता है और पाप कर्म से विरत होकर उन सभी कर्मों को भी छोड़ देता है जो सुख प्राप्ति के निमित्त किए जाते हैं। इस तरह पुनर्जन्म और भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। निष्काम धर्माचरण और आत्मज्ञान के प्रभाव से पूर्व कर्मों के संचित संस्कार भी क्रमशः लुप्त हो जाते हैं। तब इस जन्म के बाद पुनर्जन्म नहीं होता और कर्म का बंधन छूट जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। इसी को मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। शरीर, इंद्रिय, मन सभी के बंधनों से आत्मा मुक्त हो जाती है और एक बार बंधन का नाश हो जाने पर कभी वह जन्म मरण के जाल में नहीं फंसता। यह पहले ही कहा जा चुका है कि मीमांसा में चैतन्य को आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं माना जाता। जब आत्मा शरीर और इंद्रिय के द्वारा विषयों के संपर्क में जाती है, तभी उसे सुख दुख आदि के अनुभव या ज्ञान होते हैं। मुक्त आत्मा शरीर, इंद्रियों और मन से पृथक हो जाती है, इसलिए उसमें चैतन्य का धर्म नहीं रहता, अतः वह सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकती। मोक्षावस्था आनंद की अवस्था नहीं है। यह अवस्था इसलिए वांछनीय है कि इसमें सभी दुखों का सर्वदा के लिए अंत हो जाता है। यह वह अवस्था है जिसमें आत्मा सुख दुख से परे अपने यथार्थ स्वरूप में रहती है। आत्मा के स्वस्थ भाव का इसके सिवा और शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता कि उसमें केवल सत्ता और चैतन्य की निहित शक्ति अर्थात वास्तविक चैतन्य नहीं विद्यमान रहता है, परंतु परवर्ती काल के कुछ भाट्ट भी वेदांत के समान मुक्ति को आनंदानुभूति रूप मानने लगे थे। धर्म विचार का चौथा टॉपिक है, क्या मीमांसा दर्शन अनिश्वरवादी है? क्या मीमांसा दर्शन को निश्चयवादी कहना चाहिए? मीमांसा का वेद ही प्राण है। इसको ध्यान में रखते हुए यह विश्वास करना कठिन प्रतीत होता है कि मीमांसा ईश्वर को नहीं मानती है। मैक्स मूलर साहब का कहना है कि मीमांसकों ने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध जो युक्तियां दी, उनसे यही सिद्ध होता है कि यदि ईश्वर को सृष्टिकर्ता मान लिया जाए तो उन पर क्रूरता, पक्षपात आदि के दोष आरोपित हो जाते हैं। परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानने का अर्थ निरीश्वरवाद नहीं है। मैक्स मूलर कहते हैं कि कुछ सर्वेश्वरवादी दर्शन जैसे अद्वैत वेदांत का स्पिनोजा का दर्शन भी तो सृष्टि को यथार्थ नहीं मानता, इसलिए उन्हें निश्वरवादी कहना न्याय संगत नहीं होगा। यदि मीमांसा को वैदिक परंपरा की दृष्टि से, जिस पर मीमांसा को इनका गर्व है, देखा जाए तो प्रायः मैक्स मूलर साहब का कहना ठीक है। परंतु मीमांसा जो स्वयं कहती और करती है, उस दृष्टि से देखने पर उनका विचार सर्वथा ग्राह्य नहीं हो सकता। जब हम देखते हैं कि प्राचीन मीमांसा ईश्वर के बारे में चुप है और पीछे के मीमांसक जैनों की तरह ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाणों का खंडन करते हैं, ईश्वरवाद के लिए नए प्रमाण भी नहीं देते, तो हमारे पास इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं रह जाता कि ईश्वर में कभी उनकी आस्था थी। हाँ, वैदिक देवताओं का यज्ञों से अविच्छेद संबंध है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मीमांसा बहुदेवतावादी है, परंतु यह विचार भी निसंदेह रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मीमांसा के लिए इन देवताओं का अस्तित्व केवल वैदिक मंत्रों में ही है। न कहीं इनकी पृथक सत्ता मानी गई है, न उन्हें उपास्य ही स्वीकार किया गया है। वेद के सूक्तों से हम देख पाते हैं कि मंत्र दृष्टा ऋषि यज्ञ स्थल में देवताओं के आगमन की साक्षात अनुभूति करते थे, परंतु मीमांसा इस बात पर आश्चर्य करती है कि एक ही देवता एक ही समय में भिन्न भिन्न पूजा स्थानों में, अर्थात जहां उनका आह्वान किया गया है, कैसे उपस्थित रह सकते हैं। इसलिए यह भी कहना युक्तिसंगत नहीं होगा कि मीमांसा को वैदिक ऋषियों के समान देवताओं में ज्वलंत विश्वास था। मीमांसा के देवता महाकाव्यों के अमर पात्रों की तरह हैं। वे देश काल जगत के नहीं हैं, वे यथार्थ पुरुष नहीं किंतु आदर्श स्वरूप हैं। परंतु एक अर्थ में वे इन पात्रों से अधिक हैं, क्योंकि वे काल्पनिक नहीं हैं। वे शाश्वत स्वतः प्रकाश चरित्र हैं, क्योंकि वे नित्य प्रकाश से वेदों में वर्णित हैं। ऐसे देवताओं में ऐश्वर्य और पवित्रता का भाव भले ही मिल सके, परंतु ईश्वर का भाव उनसे नहीं आता। अतएव केवल वैदिक परंपरा की दृष्टि में मीमांसा का निरूपण करना उचित नहीं, परंपरागत धर्म के अंग शरीर के अंग की तरह अनुपयोग से जीर्ण हो जाते हैं। मीमांसा दर्शन मानव जीवन का जो नक्शा खींचता है उसमें वैदिक ईश्वर का कोई व्यवहारिक प्रयोजन नहीं पड़ता, अतएव वैदिक ईश्वर धीरे धीरे मिट गए हैं। मीमांसा दर्शन मानव जीवन के इतिहास के इस स्वाभाविक नियम का एक दृष्टांत है कि कैसे साधन का महत्व अतिरंजित होने से वह स्वयं साध्य का आसन ग्रहण कर लेता है और मंदिर तथा संत महात्माओं की वेदी पर ईश्वर का बलिदान चढ़ जाता है। मीमांसा ने वेद के महत्व को इतना अधिक बढ़ाया है कि वैदिक युग में देवताओं में जो ज्वलंत विश्वास था वह धीरे धीरे म्लान हो गया। फिर भी वैदिक वाक्यों का प्रामाण्य और अर्थ का सूक्ष्म विचार करते हुए मीमांसा ने जिन युक्तियों और सिद्धांतों का उद्भावन किया है वे बहुत ही उच्च कोटि के हैं और इसीलिए मीमांसा को दर्शनों में एक आदरणीय स्थान प्राप्त है।